फिर इसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने वो तफसीलात आयत में नहीं दी जो हम सीरत से पढ़ते हैं। और वो क्या कि मुकामे शौत पे पहुँचे, अब्दुल्ला बिन उबई 300 साथियों को लेके निकल गया। अब इस मंज़र को देख के क्या हुआ, इस हम्मत ताइफतानि मिनकुम, जब कसद कर लिया था दो गिरोहों ने तुम में से, किस बात का कि अन तफशला, कि वो हिम्मत हार दें, जब इरादा किया। ताइफतान जो है ना, ये ताइफतुन का तस्निया है, तौफ इसका रूट है, यानी तोए वाओ फा या तोए हमजा फा, दोनों में से कोई भी आप इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये हरूफ इल्लत होता है। तफशला का लफ्ज़ भी पहले नोट कर लीजिए, बुजदिली करने के लिए फा शीन लाम इसका रूट होता है, फिसल जाने को कहते हैं, स्लिप होना ना, जैसे फुट स्लिप होता है या टंग स्लिप होती है, बुजदिली दिखाने के लिए, मुश्किल होना और हिम्मत छोड़ देना। और हम्मत का लफ्ज़ है ना, ये हम से है, हा मीम मीम इसका रूट होता है, गम करने को कहते हैं ना। नबी सल्लम की दुआ में भी है ना कि अंता जलिल कुरान अल अज़ीम रबी कल्बी व नूर सदरी व जला हुज़नी व हम्मी, हम्मी का जो लफ्ज़ है ना वो इसी में है। तो गम करना है, कोई भी काम करना होता है ना तो इंसान को गम लग जाता है, इसी से उर्दू का लफ्ज़ एहतमाम भी है। हम कहते हैं ना एहतमाम किया, उसमें भी गम ही होता है कि काम ठीक हो जाए, वक्त ठीक हो जाए, जो भी हम काम करने लगें वो सारा कुछ ठीक है कि नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दो जमातें थी जिन्होंने बुजदिली का इरादा कर लिया, हालांकि वल्लाहु वलीयुहुमा, और अल्लाह उन दोनों का मददगार था। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, बस चाहिए कि अल्लाह ही पर तवक्कुल करें ईमान वाले। इस आयत में कबीला औस के दो ग्रोहों का तذکرہ है, एक था ग्रोह बनी हारसा और दूसरा था बनू सलमा। कबीला औस का जो कबीला था वो था बनी हारसा और दूसरा खजरज का था बनू सलमा। अब हुआ क्या कि जब अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथ लोगों को लेके निकला तो उस वक़्त इन लोगों के दिलों में भी थोड़ी सी बुजदिली आ गई। और ऐसा हमेशा होता है, जब कोई एक ईंट निकलती है ना दीवार में से तो इर्द गिर्द की ईंटों को भी हिला देती है। इसकी सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि आप सब मुतमईन होकर सुन रहे हैं ना, और अगर आप क्लास में बैठे हैं और कोई एक उठ के जाना शुरू करे, आप में से आगे बैठे हुए में से कोई उठे और पीछे जाना चाहे तो इर्द गिर्द वाले भी परेशान होंगे। आप में से कोई एक टाइम देखेगा ना तो बाकी भी देखेंगे। फितरी बात है, हम अपने इर्द गिर्द वालों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो इनके भी दिल में ख्याल आ गया कि अच्छा ये तो जीत होनी कोई नहीं, पता नहीं क्या मसला होगा, क्या होगा, ऐसे ही ना जान चली जाए, ये वो। नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने भी कहा कि हम फिसलें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, क्योंकि वल्लाहु वलीयुहुमा, अल्लाह उन दोनों का वली था, दोस्त था, ये मुखलिस साथी थे, इनके दिल में निफाक नहीं था, अल्लाह ने इनको बचा दिया। हज़रत जाबिर कहते हैं कि ये आयत हमारे ही बारे में नाजिल हुई और हम इसके नज़ूल से बड़े खुश हैं। भाई खुश क्यों हैं? हाँ, कहते हैं कि क्योंकि एक तरफ तो इसमें हमारे फिसल जाने का तذکرہ है कि इनके अंदर इरादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन साथ ही इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वल्लाहु वलीयुहुमा, कि अल्लाह स्टिल इनका दोस्त है। तो इससे खुश हो गए, यानी अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, उनको रोक लिया, असबाब पैदा हो गए। दूसरों ने कहा, अरे तुम क्यों क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों छोड़ रहे हो। यानी एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को इस तरह ढारस देता है जैसे गिरती हुई दीवार को कोई ढारस देता है। और ये एक ऐसी सिफत है ईमान वालों के अंदर जो उनको दूसरों से बेनियाज कर देती है। इससे अमल की दो तीन बातें निकलती हैं। पहली बात ये है कि बाज़ दफ़ा सच्चे और मुखलिस मोमिन से भी बशरी कमज़ोरी की वजह से गलती सरजद हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। मत सोचिए कि कोई अगर फिसल जाता है या कोई अगर बिलफर्ज, इसको हम साथ साथ टैली कर रहे हैं ना, एक वो जिहाद है और एक दीन का जिहाद है, इल्म का जिहाद है। आपकी क्लास में कुछ लोग आ रहे हैं शुरू से, अब आप किसी को नहीं देखते, आप कहते हैं देखा फिसल गई ना, बस शौक दो दिन का था, बस अब तो नहीं होगा। कभी मत सोचिए, नहीं, आपका और मेरा काम क्या है कि अगर कोई जाने की नीयत कर रहे हैं ना तो उसको रोकें, जैसे इन दोनों कबीले वालों को दूसरों ने रोका। क्योंकि आप देखिए कि मोमिन की मिसाल ही यह है कि वो पूरे जिस्म की तरह होता है, वो जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए भी पसंद करता है। तो हमारा काम क्या है कि अगर किसी के अंदर हम कोई मुश्किल देखें, मिसाल है कि आप साथी जो यहाँ कोर्स कर रहे हैं, कोई कहता है नहीं भाई मुझे तो लगता है अब मैं ये कोर्स नहीं कर सकती, नहीं अब मेरे घर के हालात नहीं सही, अब मेरे घर में ये मसला है, अब बच्चे बीमार हैं, ये है वो है, तो आपका और मेरा काम क्या होना चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ, ये सोचे और बस पढ़ लिया ना, बहुत पढ़ लिया, नहीं आपके नहीं कुछ नहीं होता, ये काम चलते रहेंगे, ये तो असल में टेस्ट है। और हकीकत है, याद रखिए कि अल्लाह हर्डल रेस की तरह हमें चलवाता है, हर थोड़ी देर के बाद एक रेस में रुकावट आएगी, और अल्लाह ताला देखना ये चाहता है कि क्या इस रेस से ये गिव अप कर जाता है कि मुझे नहीं खेलना, या फिर रुकावटों को दूर करता है। यही जिहाद है, तो कभी भी पीछे नहीं होना। और इस पे एक बड़ी अच्छी मिसाल बनती है कॉकरोचेस की। कॉकरोच को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इनकी एक बड़ी प्यारी आदत होती है, और वो क्या है कि अगर एक बास्केट में भर के आप कॉकरोचेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें ना, तो आपको उस बास्केट के ऊपर ढक्कन नहीं लगाना पड़ता, इस ख्याल से कि ये गिर ना जाए। क्यों होता क्या है कि जब भी कोई कॉकरोच अगर वहाँ बास्केट से निकल के किनारों की तरफ जाने लगता है ना, तो बाकी सारे कॉकरोच उसकी टांगे खींच के उसको वापस बुला लेते हैं। तो ये मोमिनों में भी सिफत होनी चाहिए। हमारे लिए भी ये अमल की बात है कि अपने साथियों में देखें कोई क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, परेशान है, बहुत दिन से नहीं दिखा, छुट्टियाँ बहुत होती हैं, तो आप ये ना कि हमारा कौन सा काम है, हमें थोड़ी ये जिम्मेदारी दी है, बल्कि हम और लोगों से कहें। अच्छा होता कि अगर हम नहीं आना चाहते ना, तो पहले हम दूसरे भी दो तैयार कर रहे होते हैं। क्या ख्याल है, मुश्किल है ना, मुझे भी लग रहा है, मैं भी छोड़ रही हूँ, मेरा भी ख्याल है, चलो इकट्ठे ही छोड़ते हैं, अच्छा ये कह देंगे। यानी इंसान अपने आप को दूसरे के पीछे रखना चाहता है। तो याद रखिए कि सच्चे मोमिन के अंदर अगर कभी कोई कमज़ोरी आती भी है ना, तो अल्लाह की शान ऐसी है कि उसको संभाल देती है, वो उसको संभाल देती है, और वो उनको इस काम के करने से पहले ही रोक देती है। अल्लाह ने इनको रोक दिया, और इससे पता चला कि अल्लाह फिर भी दोस्त रहता है, क्योंकि वह अल्लाह ही फल यतवक्कलिल मोमिनून, अल्लाह ही के ऊपर तवक्कुल करते हैं ईमान वाले। यहाँ लफ्ज़ तवक्कुल आया, वाव काफ लाम इसका रूट है। तवक्कुल किसको कहते हैं, बड़ी जामे एक तारीफ़ है, वो आपको लिखाती हूँ। अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा और ये यकीन मोहकम कि इसका हुक्म अटल है, यानी टल नहीं सकता, जो अल्लाह का हुक्म है वो हो के रहेगा। इसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल के ज़रूरी असबाब के मुहैया करने में भी पूरी जिद्दोजहद की जाए, इसको तवक्कुल कहते हैं। अपने लफ्ज़ों में बताती हूँ, इस बात पर पूरा यकीन कि अल्लाह का फ़ैसला जो है वो हो के रहेगा, लेकिन साथ साथ असबाब को भी इस्तेमाल किया जाए। हज़रत साहल फरमाते हैं कि जो शख्स तरके असबाब को तवक्कुल कहता है, वो अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत पर एतराज़ करता है। बस लोग काम करते कराते कुछ नहीं कहते हैं, हमने अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया हुआ है। तवक्कुल क्या है, एकल व तवक्कल, घोड़े को बांधो, ऊँट को बांधो, फिर तवक्कुल करो। एक दफ़ा एक सहाबी आपके पास आए, आपने कहा कि घोड़ ऊँट किधर है, कहा बाहर है, कहा बांध के आए हो, कहा नहीं खुला छोड़ आए हो, क्यों भाई, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल किया। आपने कहा गो जाओ वापस, एकल उसको बांधो, एकल रस्सी से बांधने को कहते हैं कि जाओ इसको बांधो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो तवक्कुल क्या है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश करे। मसलन आप यहाँ आते हैं कहीं भी, घर को लॉक करके आए, दरवाज़े बंद करके आए, खिड़कियाँ बंद करके आए, आप जो भी तरीका है उसको इख्तियार करके फिर कहें कि अल्लाह मैंने तो कोशिश कर ली इस घर को सिक्योर रखने की, अब तेरे ऊपर तवक्कुल है, ठीक है। और आप कहें दरवाज़े खोल दूँ, सोना चांदी घर के बाहर दरवाजे पर रख दूँ कि मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया, तो ये तवक्कुल नहीं है, ये मजाक होगा तवक्कुल का। तो पता क्या चला कि मुसलमान अपनी सारी कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करते हैं। यानी ये भी नहीं करना कि असबाब पे भरोसा कर लें कि हम सब कुछ कर सकते हैं और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये भी नहीं करना कि कुछ ना करो और अल्लाह पे डाल दो। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये कमज़ोरी आ गई कि काम करने कराने को दिल नहीं चाहता, और आखिर में कह देते हैं कि अल्लाह ही नहीं चाहता, और अल्लाह ताला का तो हमारे साथ ऐसा मामला है कि वो खुद ही हमें ठीक कर देगा, या नहीं करना तो उसे नहीं करना। तो दुरुस्त बात क्या है कि अपनी पूरी कोशिश की जाए, फिर उसके बाद अल्लाह सुबहान तआला के ऊपर काम किया जाए। अब आप देखिए यहाँ फिर एक बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन देखिएगा। एक तरफ अब्दुल्ला बिन उबई ने पलटने का इरादा किया, और दूसरी तरफ इन दो कबीलों ने किया। अल्लाह ने अब्दुल्ला बिन उबई को क्यों नहीं वापस आने की तौफीक दी, इन दो को के दिल, इनके दिल क्यों बांध दिए, सवाल वाज़े। यानी वो भी 300 के साथ निकल रहा था, अल्लाह ने उसके दिल को क्यों नहीं बांधा, इसलिए कि अल्लाह उसका वली नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि हम बाज़ दफ़ा जो नेकी के काम से पीछे रुक जाते हैं ना, असल में ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की दोस्ती नहीं है हमारे साथ, हम इस काबिल ही नहीं होते कि अल्लाह हमें आने दे। देखिए सिंपल सी बात याद रखिएगा, शायद आपको सारी ज़िंदगी ये बात याद रहे, और वो क्या कि आप हर एक को अपने घर नहीं आने देते, आपके घर में वही आता है जिसको आप चाहें। ऐसे ही है ना, या आपकी मोहब्बत हो, हर बंदे के ताल्लुकात के डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, इसी तरह अल्लाह ताला हर बंदे को अपने तरफ नहीं आने देता, अल्लाह बुलाता सबको है। वल्लाहु यदुकुम इला दारुस्सलाम, अल्लाह की पुकार रात दिन लगती, आओ आओ। लेकिन जब बंदा एक ख़ास हद तक मुनकिर हो जाए, इनकार ही करता रहे, जिसको कहते हैं ढिठाई पे आ जाए ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको कहते हैं अब मैं नहीं तुम्हें आने दूंगा। कभी ऐसा होता है कि किसी को दावत देते हैं, आप कहते हैं आइएगा, वो कहते हैं अच्छा आऊँगी, फिर नहीं आते। वो एक अलग बात है, कोशिश के बावजूद ना आए, असबाब नहीं बन रहे, हालात नहीं बन रहे, तड़प बहुत है। बाद लोग टालने के लिए भी कह देते हैं, तो मुझे उस वक्त खौफ आता है। मैं एक जुमला बोलती हूँ अक्सर, मैं कहती हूँ कि देखें आज तो ये हो रहा है ना कि मैं नहीं आ रही, कहीं वो वक्त ना हो कि अल्लाह मुझे कह दे कि मैंने तुम्हें नहीं आने देना। ये अल्लाह का इंतकाम होता है। अब्दुल्ला बिन उबई के दिल में खोट था, निफाक था, चाहे बज़ाहिर वो कैसे हाल हुलिये वाला था, अल्लाह ने उसको निकाल के बाहर फेंका। अल्लाह वो दर्जे उसको देने ही नहीं चाहता था जो दूसरे मोमिनों को मिलने वाले थे। इसके बरक्स ये दो कबीले जो पीछे हटने लगे थे, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। इससे एक और बात भी अमल की निकलती है, और वो क्या कि अल्लाह सुबहान तआला सेकंड चांस देता है। हम लोगों को एक ही चांस दे के फतवा दे देते, नहीं 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 इसको आजमा लिया, ये खोटा है, ये बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से करते हैं, इन्होंने ये काम करना नहीं वो नहीं। नहीं, अल्लाह इंसानों को सेकंड चांस देता है, आप भी दिया करें। एक बंदे को आपने दावत दी, वो दीन के ऊपर आ गया, बात हो गई, कुछ दिन आया फिर रुक गया, तो बस ख़त्म। नहीं, आप उसको दोबारा भी चांस दे सकते हैं हर मौके पे। याद रखिए इंसान इंसान है, अल्लाह ताला उसको मौके देता है। फिर एक और बात पता चलती है कि अगर नियत में खलूस हो तो इंसान खुद अपनी गलती पकड़ लेता है। सच है ना, हमें अपनी गलतियाँ क्यों नहीं पता चलती, हम दूसरों के कंधे पे तलवार रखते हैं, नहीं वो बच्चों का मसला है, वो फलां का मसला है, वो घर का मसला है। असल में हमें अपनी गलती नहीं पता चलती कि अभी वो ज़ौके यकीन पैदा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जिसको इस बात का यकीन आए कि मैं इस काम पर निकली हूँ तो मेरा जन्नत का रास्ता आसान हो रहा है, क्या फिर वो दूसरों की तरफ देखेगा या उनकी वजह से अपने आप को पीछे कर देगा? फिर आप एक और चीज़ भी जहन में रखिएगा, और वो क्या कि जब लीडरशिप के ख़िलाफ़ बदगुमानी होती है ना, तो कदम जमते नहीं हैं। अब्दुल्ला बिन उबई का सारा सर झगड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से था, इसीलिए मैंने शुरू में वो आपको वाक्या सुना दिया। हर मौके पे ये अपने आप को अल्लाह के नबी के टैली करता था, मैं होता तो क्या होता, मैं मुकाबल पे। जैसे वो दो लोग होते हैं ना एक कुर्सी के लिए, तो एक हिस्बे इक्तदार में गया तो दूसरा इख्तलाफ में गया। हर मौके पे इसने अपने आप को अल्लाह के नबी के मुकाबल किया। अब लीडर थे ना अल्लाह के नबी, जब लीडर के ऊपर शक आ गया ना, बदगुमानी आ गई, नहीं ये ठीक नहीं है, तो ऐसा बंदा कभी दीन पे नहीं जमता। हम सब अपने लिए ये बातें लिख रहे हैं, कहीं चलते चलते अगर हम लुढ़क गए ना, तो दूसरों को मुजरिम करार देने से पहले इंसान अपने आप को देख ले कि कहीं मेरे अंदर तो ये बात नहीं थी। हाँ, अगर अपनी ज़ात के अलावा कोई अपनी फितरी सुस्ती है, बुजदिली हो सकती है, किसी को नींद बहुत आ सकती है, किसी को भूख बहुत लग सकती है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को चलाते ही रहता है, मौका मिल जाता है। लेकिन जहाँ नीयत में खोट होता है, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने देता। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाक्य सुना दिया किस बात की रोशनी में कि मुसलमानों ने कोशिश की और अल्लाह ताला ने उनकी किस तरह से मामला किया। अभी जंग के हालात नहीं शुरू हुए, टैली करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ उहद की बात दी, साथ ही बता दिया कि तुम क्यों गम करते हो, क्या तुम्हारा रब तुम्हें उहद में फतह नहीं देगा? हालांकि वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और अलबत्ता तहकीक तुम्हारी मदद कर चुका अल्लाह बदर में, और जबकि तुम बड़े ही कमज़ोर थे, लिहाजा फ़त्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, बस अल्लाह से डर जाओ ताकि तुम शुक्र अदा करो। मुसलमानों की हिम्मत बंधाई जा रही है कि आज तो तुम और ज़्यादा हो, ज़रा सोचो तो सही, 1 साल पहले अल्लाह ने तुम्हें कैसी फ़तह दी। अल्लाह ताला मोरेल बुलंद कर रहा है, मुसलमानों के हौसलों को बुलंद कर रहा है कि क्या हुआ, आज तो तुम 1,000 हो, चलो 1,000 से भी खोटे निकल गए, 300 पीछे, 700 रह गए हो, तो लो क्या हुआ। कल याद करो माजी का वो वाक़या जब तुम बदर की में थे, बहुत छोटे थे, बहुत थोड़े थे, अज़िल्ला यानी बिल्कुल कमज़ोर थे, मुराद ये कि तुम्हारी कुछ सह नहीं थी, सह नहीं थी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। जिस ज़ात ने उस वक़्त तुम्हारी मदद की, क्या वो तुम्हारी मदद आज नहीं कर सकती? करना क्या है, अल्लाह की मदद को लाना चाहते हो तो फ़त्तकुल्ला, अल्लाह कट तकवा इख्तियार करो। इससे क्या पता चलता है? पहली बात है कि हौसले टूट रहे हो ना, तो बेहतरीन मामला क्या होता है कि उसका हौसला बुलंद किया जाए। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को अपने काम के लिए चुना, और जहाँ नबियों को थोड़ी मुश्किल आई तो आसमान से तसल्लियाँ उतरती हैं। ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली है, लश्कर इस्लाम की हौसला अफजाई हो रही है, उनकी तस्कीन हो रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो क्या हुआ, गम ना करो, हो जाएगा मामला। और अगर इस आयत को हम गज़वे उहद के बाद की आयत समझे ना, तो फिर इससे मुराद क्या है कि क्या हुआ अगर उहद में तुम्हें मुश्किल हुई, तुम्हारे मारे गए, तकलीफ़ खदे हालात हुए, तो क्या हुआ एक मौके पे बदर में फतह नहीं हुई थी? इससे अमल की बात क्या मिलती है कि जब कोई नुकसान हो तो उस वक्त इंसान किसी फ़ायदे को सोच ले, कभी बीमार हो ना तो सेहत के दिनों को सोच ले, ये है लअल्लकुम तशकुरून। कभी इंसान को कोई गम मिले तो खुशियों के दिन सोच ले, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये धूप और चौं का नाम है। तिलकल अय्यामुन नुदाविलुहा बैनन नास, हम इन दिनों को लोगों के बीच में फेरते हैं, और लड़ाई तो एक डोल है, कभी एक के हाथ में कभी दूसरे के हाथ में। अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं गम ना करो, फिर क्या हुआ तुमसे यहाँ गलती हुई, तुम्हें शिकस्त हुई, तो क्या हुआ कल तुम जीते भी तो थे। बिल्कुल वही अंदाज़ नहीं लग रहा जैसे आप में से कोई अपने बच्चे को जिसके थोड़े कम नंबर आ गए और वो यूं मुरझाया हुआ बैठा हुआ है, रोना आ रहा है उसको कि ये क्या हुआ, तो आप कहते हैं बेटा क्या हुआ, देखो पिछले 3 माह पहले तुम फर्स्ट भी तो आए थे ना, क्या हुआ अगर सेकंड आ गए हो, इंशाल्लाह मेहनत करोगे अगले सेमेस्टर में तुम फिर फर्स्ट आओगे। हौसला मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है इस बात से? इससे क्या पता चलता है कि इंसान को ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए जो हौसला देने वाले हों, हौसला तोड़ने वाले ना हों। यानी पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, ये दो लफ्ज़ हैं। एक लोग होता है जो हमेशा रोशन चेहरा देखते हैं, रोशन ख्याल होते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ देखते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो हमेशा ही नेगेटिव चीज़ देखते हैं। बस आप देखिए कि ये ग्लास है ना, इसको पी के दिखाती हूँ, फिर ये देखिए पानी है ना। अगर आप में से पूछा जाए कि ये ग्लास की कैफियत बयान करें, कुछ लोग क्या कहेंगे? 1/3 ग्लास पानी से भरा हुआ है, सच है ना? और कुछ क्या कहेंगे? एक हिस्सा खाली है। ये जिन्होंने ये देखा ना पानी है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये रोशन ख्याल है, ये ज़िंदगी में रोशन पहलुओं को देखते हैं। याद रखिए हर इंसान की ज़िंदगी में किसी लम्हे को गम आ सकता है, हालात के अंदर इंसान दो चार हो सकता है। अपनी ज़िंदगी की आदत बनाए, अपने बच्चों को इसी तरह रेज करें कि हमेशा रोशन पहलू दिखाएं। आज तो मुसलमानों के ऊपर भी हालात की ऐसी नेगेटिव बातें कर कर के बाज़ दफ़ा लोगों के हौसले तोड़े जाते हैं, इस्लाम ये है, ऐसा हो गया, अब तो मुसलमान डूब गए, अब तो होंगे नहीं। कभी भी नहीं, हमेशा स्ट्रॉन्ग बातें करें, अच्छी बातें करें, नहीं इस्लाम उभरेगा, अब दोबारा लोग दीन पे आ रहे हैं। नहीं, आज के यंगस्टर्स का बहुत दीन की तरफ शौक है, अब देखना इस्लाम का सूरज दोबारा निकले। इस तरह की बातें करें कि जिससे हौसले बुलंद हो। और जो लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ देखते हैं ना, उनका हाल तो यही होता है कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। कल तक मियाँ अच्छा नहीं था, बच्चे भी अच्छे नहीं हैं। कुछ लोग हमेशा जलते कुड़ते होते हैं। आप देखें, आपको ज़रूर कुछ किरदार ऐसे दिखेंगे जो हमेशा शिकवे करते हैं, कभी आप उनके चेहरे पर खुशी नहीं देखेंगे, कभी तशक्कुर नहीं देखेंगे, कभी ये नहीं देखेंगे कि उनको कोई खैर मिली है कि नहीं मिली। जब शिकवा करेंगे यही करेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला, और हमारे साथ तो ज़माने ने हमेशा जुल्म किया। नहीं, अल्लाह ताला करे फत्तकुल्ला, दो चीज़ें इधर, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ, और लअल्लकुम तशकुरून, शुक्र। जितना तकवा बढ़ता है ना, उतना इंसान की तबीयत में शुक्र आता है, क्योंकि ऐसा शख्स दुनिया की किसी चीज़ को अपना हक तो समझ के नहीं लेता, वो तो अल्लाह की नेमत ही समझ के लेता है। थोड़ा भी मिलेगा वो कहेगा अल्लाह मैं तो इसके भी काबिल नहीं था, और दूसरा क्या है वो उसको जितना भी मिले तो कहता है मिले ही क्या है। देखिए कि बाज़ दफ़ा हमारे पास इतना कुछ ज़िंदगी में आ जाता है कि हम इतना कुछ होने के बावजूद कहते हैं क्या है, कुछ भी तो नहीं है, नथिंग टू इट। मसलन आप बच्चों की तरबियत में अगर ये चीज़ डाल दें कि हर वक्त उनके पास खाना पीना फराख है, बेशुमार है, जब फ्रिज खोली फ्रिज भरी हुई है, फ्रीज़र खोला भरा हुआ है, स्नैक्स की अलमारियाँ भरी हुई हैं, क्या ख्याल है बड़े खुश होते हैं? चंद दिन के बाद कहेंगे क्या खाएं, नथिंग टू, सब सेम है, बोर हो गए। ऐसों का इलाज क्या है कि आप उनको 15 दिन कुछ ना खरीदें उन्हें, के जो घर में वही खाओ। यकीन करें ये पहले दौर के लोग ये कहा करते थे ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जब आप एक बर्तन को हमेशा ही भरा रखेंगे तो खाली क्या होगा, आप पेट भरे पे फिर खाएंगे आपको मज़ा ही नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह के रवैये लोगों को बिल्कुल बेहिस बना देते हैं कि जब उनको बिल्कुल दूसरी तरफ दिखाई नहीं जाती। अल्लाह ताला यहाँ मुसलमानों को एक बड़ा खूबसूरत सबक दिखा रहा है कि देखो, अगर अल्लाह की फतह, अल्लाह की मदद लेनी है तो अपने अंदर तकवा पैदा करो और अल्लाह का शुक्र करो, नेमतों को कदर करो, शुक्र करो। ये 700 भी तो तुम्हारे साथ हैं, ये भी ना होते तो क्या होता? अल्लाह के नबी के हौसले बुलंद किए जा रहे हैं। क्या हुआ अगर उधर इतने 3,000 लोग हैं तो क्या हुआ अगर ये 700 भी ना होते? तो इंशाल्लाह ये सोच जो होती है ना, ये इंसान को फिर हर वक्त इस ख्याल में रखती है कि मैंने तो अल्लाह ताला की नेमतों का भी, पहलियों का भी हक नहीं अदा किया, और क्या मिले। और ये सोच फिर इंसान को ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ाती है। वरना जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, जो हमेशा अपनी ज़ात में खोए रहते हैं, वो तो फिर अल्लाह से भी नाराज़ ही रहते हैं। आप आजमा के देख लें, लोग कहते हैं किसी को, किसी ने कहा कि शुक्र करें तो कहती है दित्ता ही किसू, किस पे शुक्र करें, अल्लाह ने हमें दिया ही क्या। इंसान खड़ा नहीं हो सकता अपनी जगह पे अगर वो अल्लाह के मुकाबले में आ जाए। तो लिहाजा पता क्या चला कि कल जिसने फतह दी थी आज शिकस्त हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर ईमान है लेकिन अल्लाह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। उहद की शिकस्त में जो तरबियत मकसूद थी वो बदर की फतह में नहीं थी, क्योंकि बदर के फौरन बाद देखिए मुनाफिकीन भी इस्लाम की तरफ आ गए। और उहद की इस शिकस्त के बाद आप देखेंगे इस्लाम को कितने बड़े फ़ायदे हुए। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि वो किस तरीके से लोगों के साथ मामला करता है। हमें अपने आप को चेक करना है और इस पे ज़रूर मुहासबा करेंगे कि क्या वाकई हम अपनी ज़िंदगी में एक रुख के चीज़ों को देखते हैं या दूसरे पे। यहाँ तक कि आयतों की तिलावत भी सुनेंगे और गौर व फिक्र भी करेंगे।
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون